नहिम्या का ग्रंथ एज्रा और नहिम्या के ग्रंथों का परिचय। इन दोनों ग्रंथों में वर्णित घटनाएं तथा इन दोनों के उद्देश्य समान हैं, इसीलिए पहले ये दोनों ग्रंथ एक समझे जाते थे। दोनों इतिहास ग्रंथों की अगली कड़ी प्रस्तुत करते हैं। इनमें इस बात का वर्णन है कि यहूदी लोगों ने बाबुल के निर्वासन से लौटकर अपने मंदिर का पुनर्निर्माण तथा अपने समाज का पुनर्गठन किस प्रकार किया। एज्रा का ग्रंथ राजा सिरूस की राजाज्ञा के वर्णन से प्रारंभ होता है। इतिहास ग्रंथ का अंत इन राजाओं के वर्णन से हुआ है। इससे इन दोनों ग्रंथों का घनिष्ठ संबंध प्रकट होता है। जब फारस के राजा सिरूस ने यहूदियों के निर्वासन के 50 साल बाद बाबुल को अपने अधिकार में किया तो उसने यहूदियों को स्वदेश लौटने तथा ध्वस्त यरूशलेम और उसके मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति प्रदान की। उसने उन्हें स्वदेश लौटने में कई प्रकार की सहायता की। पवित्र नगर यरूशलेम पहुंचकर यहूदियों ने ईश्वर के विधान और संहिता का पालन करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने विभिन्न प्रकार की आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों का सामना करते हुए पुनरुद्धार कार्य आरंभ किया। 515 ईसा पूर्व में मंदिर की प्रतिष्ठा की गई और अगली आधी सदी में विभिन्न विरोधों के बावजूद वे पवित्र नगर यरूशलेम के पुनर्निर्माण में लग गए। कुछ समय बाद एज्रा के नेतृत्व में निर्वासितों का दूसरा दल स्वदेश लौटा। एज्रा के राजा आर्तजर्क्सीस से एक फरमान प्राप्त हुआ कि वे स्वदेश लौटे यहूदियों के धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्गठन का कार्य करें। एज्रा प्राण प्राण से इस कठिन कार्य में लग गए। नहिम्या के ग्रंथ में भी उक्त घटनाओं का वर्णन है। राजा आर्तजर्क्सीस के साकी नहिम्या ने स्वयं प्रयास कर राजा से यरूशलेम में उद्धार कार्य करने का फरमान प्राप्त किया। वो यरूशलेम जाकर नगर तथा उसकी प्राचीर के पुनर्निर्माण कार्य की देखभाल करने लगा। घोर विरोध होते हुए भी ये कार्य तेजी से किया जाने लगा। इसी बीच नहिम्या की नियुक्ति यूदा प्रांत के राज्यपाल के रूप में हो गई। लोगों को संहिता पालन की शिक्षा दी गई और विधान का नवीकरण किया गया। इन दो ग्रंथों के लेखकों का उद्देश्य यह दिखाना है कि ईश्वर अपनी प्रजा को कभी नहीं भूला। वो उसे दासता से मुक्त कराकर फिर उस पवित्र देश में ले आया जिसे प्रदान करने का वचन उसने यहूदियों के पूर्वज इब्राहिम को दिया था। ईश्वर अपनी प्रजा की देखभाल उसके बहुत से शत्रुओं के होते हुए भी करता रहा। ग्रंथ लेखकों के विचार से ये इस बात का प्रमाण है कि यहूदियों के लिए नवजीवन का उषाकाल आ गया है। निर्वासन के बाद यहूदियों की स्थिति। सच पूछिए तो बाबुल निर्वासन से वापस आने के बाद से ही ईश्वर की इसराइली प्रजा के इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ होता है। अब इसराइली लोग स्वतंत्र नहीं रह जाते, उनका अपना राजा नहीं होता, बल्कि उनका देश फारस के साम्राज्य का एक प्रांत बन जाता है। बाबुल निर्वासन से लौटने वाले यहूदी वो मूल हैं जिससे वो नया अंकुर फूटेगा जिसके विषय में ईश्वर ने उनके पूर्वजों को वचन दिया था। निर्वासन के समय यहूदियों का अन्य जातियों के साथ संपर्क हुआ, अतः उन जातियों को सच्चे ईश्वर की भक्ति, उसके विधान और भावी मुक्तिदाता के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको अनुभव हुआ कि ईश्वर ने धरती पर अपने राज्य की स्थापना का कार्य आरंभ किया है और उन्हें आश्वासन मिला कि आगे चलकर ईश्वर के राज्य में सभी को स्थान मिल सकेगा। यहूदियों को भी संकेत मिला कि ईश्वर द्वारा उन्हें दिया गया वचन केवल उन्हीं के लिए न होकर अन्य जातियों के लिए भी है। इसी समय इसराइल में शास्त्री नाम के एक बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग के लोग धर्मग्रंथ और संहिता के ज्ञाता थे। उनका कार्य लोगों के सामने धर्मग्रंथ और संहिता का पाठ, उसकी व्याख्या और उपदेश था। एज्रा उन्हीं लोगों में थे। वो बाबुल निर्वासन से लौटते समय संहिता की एक प्रति साथ ले आए थे। उन्होंने यरूशलेम पहुंचने पर लोगों को एकत्रित किया और संहिता के पाठ तथा उपदेश द्वारा समाज सुधार का शुभारंभ किया। यहूदियों का अपना कोई राजा न होने के कारण उस समय एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जिसे यहूदियों की परिषद या महासभा कहते हैं। इस परिषद में 71 सदस्य थे जो याजकों, शास्त्रियों तथा नेताओं के बीच से चुने जाते थे। इस परिषद के अधिकार क्षेत्र में मुख्यतः धार्मिक बातें आती थीं। बाद में विभिन्न विदेशी शासकों द्वारा इस परिषद को न्यायालय के भी कुछ अधिकार प्राप्त हो गए। सभागृह एक अन्य उल्लेखनीय संस्था है जो आज भी यहूदियों के बीच जीवित है। जहां भी यहूदियों के 10-20 घर होते हैं, वहां वे विश्राम दिवसों और पर्व के दिनों में एकत्रित होकर धर्म ग्रंथ के पाठ, सामूहिक प्रार्थना, भजन आदि के लिए एक भवन का निर्माण कर लेते हैं और उस भवन को सभागृह कहते हैं। इन तीनों संस्थाओं ने यहूदीवाद को विशेष रूप से प्रभावित किया और यहूदी समाज को खतरों से बचाने में भारी योग दिया।